वो कहानियां शो धूम्रपान, मद्यपान या किसी अन्य प्रकार के व्यसन का समर्थन नहीं करता है और ना ही किसी प्रकार के अंधविश्वास या रूढ़िवादी विचार को बढ़ावा देता है। ये शो केवल कहानियों की एक श्रृंखला है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान और घटनाएं काल्पनिक हैं। श्रोताओं को अपने विवेक से फैसला लेने की सलाह दी जाती है। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट वो कहानियां, प्रस्तुत है सीजन 1 की आखिरी और 5वीं कहानी स्वयं, भाग 2। लेखन और आवाज दीपक मेड़तवाल। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि पेशेंट विवेक डॉक्टर गौतम को बता रहा था कि किस तरह से एक शाम को सड़क पार करते वक्त उसकी ही शक्ल का एक शख्स उसे मिला और महज कुछ सेकंड की मुलाकात ने उसे हिलाकर रख दिया। उसने उस अजनबी शख्स से फिर से मिलने की कोशिश की, लेकिन वो उसे ढूंढ ही नहीं सका। आखिरकार विवेक इस बात को लगभग भुला चुका था। लेकिन हफ्ते भर बाद सुबह के वक्त जब वो पैदल अपने ऑफिस के लिए जा रहा था, उस वक्त एक गाड़ी लहराती हुई उसकी तरफ आई और ड्राइवर ने उस पर गाड़ी लगभग चढ़ा दी थी। वो एक फुट की दूरी पर ही उस गाड़ी ने अपने ब्रेक लगाए थे। अचानक से हुए इस वाकये से विवेक बुरी तरह डर गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि आगे जो होने वाला था वो उससे भी ज्यादा डरावना था।
डॉक्टर, उसने मुझ पर गाड़ी चढ़ाई दी थी। बस मुझसे एक फुट की दूरी पर उसने ब्रेक लगाए होंगे, मैं डर गया था। लेकिन मैं संभला और मैं कुछ रिएक्ट करूं, उससे पहले ही मेरी निगाह गाड़ी के ड्राइवर पर गई। डॉक्टर, उसकी शक्ल तो बिल्कुल मेरी जैसी थी।
विवेक की सांसें तेज चल रही थीं और डॉक्टर गौतम, वो भी उसकी बात सुनकर ताज्जुब में पड़ गया था। तो इस बार तुम्हारे उस हमशक्ल ने तुम पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की?
डॉक्टर, ये वो नहीं था।
यह सुनकर डॉक्टर गौतम पहले से भी ज्यादा चौंक पड़ा। उसने विवेक के चेहरे को गौर से देखा।
हाँ डॉक्टर, ये मेरा हमशक्ल तो था, लेकिन ये वो नहीं था जो मुझे उस शाम को मिला था। ये कोई और था।
विवेक ने पूरे यकीन के साथ अपनी बात कही थी। डॉक्टर गौतम, जो बड़े गौर से उसकी बात सुन रहा था, उसके मुंह से बरबसी निकल पड़ा। तुम पक्के से कह सकते हो कि ये दूसरा शख्स था?
हाँ डॉक्टर, ये कोई दूसरा था।
डॉक्टर गौतम को अब समझ आ चुका था कि पेशेंट के साथ जरूर कोई दिमागी प्रॉब्लम है। लेकिन उसने आगे पूछा, तो फिर तुमने क्या किया?
मैं क्या करता, मैं एकदम शॉक्ड था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैं बस उसकी तरफ देख रहा था, उसने भी मेरी तरफ देखा और वो वहां से चला गया। मैं बस ये सब देख रहा था।
विवेक के हाव भाव से पता चल रहा था कि वो बहुत ज्यादा डर गया है। ऐसा लग रहा था कि वो किसी और दुनिया में खो गया है। डॉक्टर गौतम बड़े गौर से ये सब सुन और देख रहा था। उसने विवेक की तरफ पानी का गिलास बढ़ाते हुए कहा, लो तुम पानी पियो। विवेक को जैसे होश आया, उसने अपने आप को संभाला और गिलास से पानी पीने लगा। डॉक्टर गौतम अपने दिमाग में जैसे इस पूरे केस को समझ चुका था। वो विवेक को पानी पीते देख रहा था। इसके बाद उसने अपनी घड़ी पर नजर डालते हुए कहा,
तो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे दो हमशक्ल तुमसे मिलते हैं। पहला तुम्हें अजीब तरह से घूर कर देखता है और दूसरा तुम पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करता है।
डॉक्टर गौतम ने जितने आराम से ये बात कह दी थी, उससे विवेक को ठीक नहीं लगा। उसने पानी के गिलास को एक तरफ रखा और कहा,
आपको क्या लगता है कि मैं डॉक्टर को गलत बताऊंगा?
नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था।
तुम्हारी फैमिली में और कौन कौन है?
विवेक ने पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब देने की कोशिश की।
मेरी फैमिली यहां नहीं रहती है, पिछले 3 साल से मैं इस शहर में जॉब कर रहा हूं।
ड्रिंक करते हो?
डॉक्टर गौतम की बात सुनकर विवेक ने एक झटके से उसकी तरफ देखा और वो समझ गया कि डॉक्टर उससे क्या जानने की कोशिश कर रहा था। उसने मजबूत बनने की कोशिश करते हुए जवाब दिया,
ना मैं ड्रिंक करता हूं, ना ही किसी तरह का कोई नशा।
इवन मैंने कभी स्मोक भी नहीं किया है और ना ही मुझे कभी इस तरह की कोई प्रॉब्लम रही है। मेरी फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री भी एकदम ओके है। डॉक्टर गौतम अभी भी विवेक के चेहरे को गौर से देखे जा रहा था, जैसे वो अपने पेशेंट के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। इस बात से विवेक थोड़ा अनईजी फील करने लगा, इसलिए उसने नजरें चुराते हुए आगे कहा,
डॉक्टर शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या प्रॉब्लम लेकर आपके पास आया हूं।
ये जो कुछ मेरे साथ हुआ, जितना कुछ मैंने आपको बताया,
इट्स वेरी स्ट्रेंज, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो उससे भी ज्यादा स्ट्रेंज था।
यह कहकर विवेक ने बोलना बंद कर दिया, क्योंकि गौतम अब उसकी तरफ नहीं बल्कि अपनी घड़ी की तरफ देख रहा था। डॉक्टर गौतम को यह बात समझ आ गई, इसलिए उसने आगे पूछा, इसके बाद क्या हुआ?
इसके बाद कुछ भी नॉर्मल नहीं रहा। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मैं उस दिन ऑफिस नहीं गया, मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा था। हर वक्त यही ख्याल मेरे दिमाग में आ रहा था कि मेरी शक्ल के लोगों का इस तरह मुझसे मिलना आखिर क्या है ये सब। मगर अगले दिन जब मैं ऑफिस गया तब मुझे पता लगा कि ये तो कुछ और ही चक्कर है। अगले दिन मैं ऑफिस पहुंचा, मेरे सारे साथी हंस हंसकर बात कर रहे थे, मगर मेरे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो सब मुझ पर हंस रहे हैं। मैंने किसी से बात नहीं की, मैं किसी से बात करना भी नहीं चाहता था। मुझे रात को ढंग से नींद नहीं आई थी, मेरा सिर घूम रहा था। तभी एक पियोन चाय लेकर आया, सबके साथ मैंने भी चाय ली। मैं अपने आप में खोया हुआ चाय के घूंट पिए जा रहा था, तभी पता नहीं क्यों मेरी निगाह वहां से जाते हुए पियोन पर गई और जैसे मुझे जैसे सांप सूंघ गया। ही वॉज जस्ट लाइक मी, माई फेस, एग्जैक्टली माई फेस। डॉक्टर, उसकी शक्ल भी बिल्कुल मेरी जैसी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे आसपास की सारी दुनिया घूमने लगी थी। शायद मुझे चक्कर आ रहा था। मेरे हाथ से चाय का गर्म चाय का कप मेरे कपड़ों पर गिर गया, मगर डॉक्टर मुझे पता तक नहीं लगा। मेरे कलीग ने मुझे संभाला, वो पता नहीं क्या कह रहा था, मुझे उसकी आवाज समझ नहीं आ रही थी। मैं तो बस उस पियोन को देख रहा था जो रूम से निकलकर बाहर जा चुका था। मैं अपनी जगह से खड़ा होकर उसकी तरफ भागा, लेकिन जब तक मैं वहां पहुंचा पता नहीं वो कहां चला गया था, कहां गायब हो गया था।
विवेक फिर से अपनी बात सुनाते सुनाते कहीं खो गया था। डॉक्टर गौतम ने उसे टोका,
तुमने अपने ऑफिस में किसी से उस पियोन के बारे में पूछा?
नहीं डॉक्टर, मैं किसी से क्या पूछता, कौन मेरी बात पर यकीन करता। सभी यही कहते ना कि पागल हो गया है। मैंने किसी से कोई बात नहीं की।
विवेक फिर से चुप हो गया, लेकिन इस बार डॉक्टर गौतम के कुछ कहने से पहले ही उसने आगे कहना शुरू किया,
इसके बाद ये कई बार हुआ, कभी बाजार में, कभी ट्रेन में, कभी सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त मुझे वो मिल जाता था। मेरी ही शक्ल का कोई मुझे घूरता हुआ, मुझे देखता हुआ, ये जो कुछ हो रहा था वो मेरी समझ से बाहर था। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। मैं घर से बाहर निकलने से डरने लगा, क्योंकि मैं जानता था कि वो मेरे घर से निकलने का इंतजार कर रहे हैं।
लेकिन ये चीज तो उससे भी कहीं बढ़कर थी।
अब ये चीजें मेरे घर तक पहुंच चुकी थी।
विवेक इतनी गहराई में डूबकर अपनी बात बता रहा था कि एक बारगी तो डॉक्टर गौतम को भी उसकी बातों पर यकीन करने का मन होने लगा था। उधर विवेक ने आगे बताया,
उस दिन मैं अपने फ्लैट पर ही था। मुझे घर से बाहर निकले कुछ दिन हो चुके थे,
तभी मेरे फ्लैट की घंटी बजी।
मैंने दरवाजा खोला लेकिन वहां कोई नहीं था।
मैंने बाहर सीढ़ियों से नीचे उतरकर देखा लेकिन मुझे वहां भी कोई नहीं दिखा।
मैं सीढ़ियां चढ़कर वापस अपने फ्लैट में आने वाला था कि
तभी मेरी निगाह सड़क के पार वाले घर पर गई। वहां एक औरत फूलों के गमले में पानी डाल रही थी।
उसे देखकर मुझे अच्छा फील हुआ।
पिछले कुछ दिनों में इतनी राहत मुझे कभी नहीं मिली थी जितनी उस वक्त उसे गमले में पानी डालते हुए देखकर हुई।
कुछ सेकंड के लिए मैं अपनी सारी परेशानी भूल सा गया था।
तभी उस औरत का, उस लेडी का हस्बैंड वहां आ गया। उसने उसे गले से लगा लिया। मैं कुछ सेकंड ऐसे देखता रहा। तभी मुझे एहसास हुआ कि इस तरह से कपल को देखना ठीक नहीं है, इसलिए मैंने अपनी निगाहें वहां से हटाई।
लेकिन उसका हस्बैंड, वो बंदा तो मेरी तरफ ही देख रहा था। हमारे बीच में पूरी एक सड़क का फासला था।
लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं वहां से हटने वाला था कि तभी
डॉक्टर डॉक्टर वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था और उसकी शक्ल बिल्कुल मेरी जैसी थी। मैं उसी वक्त वहां से भागकर अंदर आ गया। मैंने दरवाजा बंद कर लिया लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी भी मुझे देख रहा हो, मुझे घूर रहा हो।
डॉक्टर गौतम चुप्पी साधे कुछ सोच रहा था। विवेक के चुप होने के थोड़ी देर बाद उसने फिर से बोलना शुरू किया,
तुमने किसी से सबके बारे में बात की?
हाँ,
एक दो लोगों से की थी लेकिन उन लोगों का कहना था कि मुझे वहम हुआ है। उनमें से एक ने आपका कार्ड भी दिया था।
यह सुनते ही डॉक्टर गौतम ने उसकी तरफ देखा लेकिन विवेक कहीं खोया हुआ अपनी बात कहे जा रहा था।
और मैंने एक बार आपके यहां अपॉइंटमेंट भी ले लिया था लेकिन मैं बाहर से ही चला गया।
अपनी बात पूरी करके विवेक ने डॉक्टर गौतम की तरफ देखा जैसे वो इस वक्त उसके एक्सप्रेशंस देखना चाहता था। उसकी उम्मीद के मुताबिक ही गौतम ने थोड़ा अफसोस जताने वाले टोन में उससे कहा,
तुम्हें यहां पहले ही आ जाना चाहिए था।
डॉक्टर की बात सुनते ही विवेक ने तुरंत जवाब दिया,
डॉक्टर मुझे किसी तरह की दिक्कत नहीं है। ये जो कुछ हो रहा है ये किसी तरह का भ्रम, किसी तरह का वहम नहीं है।
विवेक की बात सुनकर डॉक्टर गौतम के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। उसने थोड़ा रुककर कहा,
तुम्हें नींद ठीक तरह से आती है?
विवेक ने धीमी आवाज में कहा,
मैंने पहले कहा था कि आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे।
लेकिन डॉक्टर गौतम ने उसकी बात को लगभग इग्नोर करते हुए कहा,
देखो विवेक, ह्यूमन माइंड इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। ये काफी कुछ रच सकता है
लेकिन इसे भी आराम की जरूरत होती है। मैं बस इसीलिए पूछ रहा हूं कि तुम्हें नींद ढंग से आती है या नहीं।
विवेक डॉक्टर की बात से सहमत नहीं नजर आ रहा था
लेकिन जब डॉक्टर उसकी तरफ ऐसे ही ताकता रहा तो उसने जवाब देना शुरू किया,
पहले तो सब ठीक था लेकिन जब से यह सब कुछ शुरू हुआ है तब से मैं ढंग से सो नहीं पा रहा हूं।
कितनी देर सोते हो? डॉक्टर की बात सुनकर विवेक ने थोड़ा असहज होकर डॉक्टर की तरफ देखा लेकिन उसके देखते ही डॉक्टर गौतम ने उससे पूछा,
हां कितनी देर सोते हो? रात को देर से नींद आती है, कई बार रात को भी नींद खुल जाती है, सुबह भी जल्दी आंख खुल जाती है।
गौतम ने पूछा, कितने घंटे सो लेते होंगे? विवेक ने कुछ गिनते हुए बताया,
हाल में तो कम हो गया है, शायद 2 घंटे 3 घंटे या इतना ही कुछ। पता है, नींद पूरी नहीं होने का असर हमारी बॉडी पर भी पड़ता है। जब इंसान की नींद पूरी नहीं होती तो थकान छाने लगती है, फिजिकल भी और मेंटल भी। ऑफिस में भी शायद तुम्हें थकान सी रहती होगी। विवेक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप डॉक्टर की तरफ देखता रहा। गौतम ने इसे उसकी हां समझकर आगे कहा, तुम्हें दिन में नींद आती है? विवेक ने कुछ याद करते हुए कहा,
ऐसे तो नहीं, लेकिन कभी कभी हल्की सी झपकी महसूस होती है, लेकिन ऐसा कभी कभी होता है।
विवेक की बात सुनकर डॉक्टर गौतम का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। लग रहा था जैसे वो कोई बात प्रूव करने के नजदीक पहुंच गया हो।
तो सपनों में भी तुम्हारे यही बात घूमती रहती होगी?
हाँ,
कभी कभी, कभी कभी।
अब डॉक्टर गौतम जैसे किसी फाइनल कंक्लूजन तक पहुंच गया था। उसने टेबल पर आगे झुकते हुए अथॉरिटी के साथ कहना शुरू किया, तुम्हारे साथ यही हो रहा है, जो कुछ तुम बता रहे हो ये हकीकत नहीं है।
डॉक्टर की बात सुनकर विवेक ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अब तक डॉक्टर गौतम अपनी सीट से खड़ा हो चुका था।
तुमने कहा कि तुम नींद ढंग से नहीं ले पा रहे। जब कोई लगातार नींद ढंग से नहीं ले पाता तो उसकी बॉडी, उसके ब्रेन पर इसका असर पड़ता है। बॉडी की एफिशिएंसी कम होने लगती है, और जब ये लगातार सही तरह से पूरी ना हो पा रही हो तो इंसान झपकी लेना शुरू कर देता है। लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो बस यही चीज, यही ख्याल लगातार घूम रहा है कि कोई तुम्हारे जैसा शख्स, यानी तुम्हारा हम शक्ल, तुमसे मिलने वाला है, और तुम्हें सपनों में भी यही दिखता है, जो तुम्हें रियल भी लगता है। लेकिन तुम्हारा दिमाग वो तो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि ये सपना है। और तभी इसी बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन पैदा होता है, और अचानक वो थॉट, वो सपना, यानी तुम्हारा वो हमशक्ल वहां से गायब हो जाता है। तुम्हारे दिमाग से वो चीज निकल जाती है और तुम्हें वो हमशक्ल दिखना बंद हो जाता है। विवेक, तुम्हारे हमशक्ल जैसा कोई नहीं है। हो सकता है कि कोई एक शख्स हो या कोई दो शख्स हो जिनकी शक्ल तुमसे मिलती जुलती हो, लेकिन इतने सारे लोग जैसा तुम बता रहे हो, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल।
डॉक्टर गौतम ने एक वकील की तरह अपनी दलील पेश की थी, लेकिन विवेक वो तो ये सब सुनकर परेशान हो गया था।
डॉक्टर, आप मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं, ये कोई दिमाग का वहम नहीं है। मेरी नींद भले ही पूरी नहीं हो पा रही हो, लेकिन मैं इतना अच्छी तरह से पहचान सकता हूं कि क्या सच है क्या वहम।
विवेक ने हताश होकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सिर पकड़कर कहने लगा,
कोई मेरी बात नहीं सुनना चाहता है डॉक्टर, ये रियल है, रियल।
अपनी बात कहते कहते विवेक को गुस्सा आ गया था, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल करते हुए आगे कहा,
आपको पता है अब चीजें इतना बदल गई हैं कि मुझे पहले से पता लग जाता है कि वो मुझे दिखने वाला है। मैं उसे महसूस करने लगा हूं। हाँ, मैं उसे महसूस करने लगा हूं। मुझे उसके आने से पहले पता लग जाता है कि वो आने वाला है, वो आने वाला है।
आप सुन रहे थे स्वयं पॉडकास्ट वो कहानियां पर। यह था भाग दो, लेखन और आवाज दीपक मेड़तवाल। और आखिर में आपके दोस्त और पॉडकास्ट वो कहानियां के क्रिएटर दीपक मेड़तवाल की तरफ से एक छोटी सी बात। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि स्वयं सीजन वन की आखिरी कहानी है। इस कहानी का आखिरी भाग आप जल्द ही सुन पाएंगे। हाँ, मैं इस बात के लिए माफी चाहूंगा कि स्वयं का सेकंड पार्ट आने में काफी वक्त लग गया। दरअसल फिलहाल जिंदगी की भागदौड़ इतनी बढ़ गई कि मैं समय नहीं निकाल पाया, लेकिन एक वजह और भी थी जिसकी वजह से मुझे इस कहानी को पूरा करने में इतना टाइम लगा। दरअसल बात ऐसी है कि क्या बताऊं, असल में मैं कहानी के अंत को लेकर, स्टोरी के एंड को लेकर थोड़ा कंफ्यूज था। ये कहानी मैंने कुछ साल पहले, यानी कि शायद 2016 में लिखी थी। उस वक्त मैं कुछ टीवी सीरियल्स लिख चुका था और एक फिल्म की कहानी पर काम कर रहा था, तो उस वक्त मैंने एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर
फिल्म की कहानी के रूप में इसे लिखना शुरू किया। स्टोरी के एंड को लेकर मेरा मेरे साथियों के साथ कई बार डिस्कशन हुआ, कुछ ने इसे पसंद किया, कुछ ने क्रिटिसाइज किया। खैर, इसीलिए मैंने इसे एक शॉर्ट स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया और इस स्टोरी का एंड मैंने वो रखा है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। पता नहीं आप लोगों को इसका एंड पसंद आएगा या नहीं, लेकिन यहां मेरा ये मानना है कि क्या हर कहानी का अंत होता ही है या हर कहानी का अंत हर किसी को पसंद आता है। जिंदगी में भी तो कितनी बार ऐसा होता है जब हम सोचकर चलते हैं कि अब ऐसा होगा, लेकिन फिर अचानक से सब कुछ बदल जाता है। कई बार अच्छा होता है, कई बार बुरा होता है, लेकिन हर बार कहानी का वो अंत नहीं होता जो हमने सोच रखा है। खैर, वो कहानियां सीरीज की बाकी कहानियों की बात करूं तो दूसरी कहानी लाल आप लोगों ने बहुत पसंद की और मैं फिर से कहूंगा ये आप लोगों का सपोर्ट ही था जिसने कहानी को एक रोमांचक सफर बनाने में मदद की। आपने मुझ पर ट्रस्ट किया, स्टोरी के उतार चढ़ाव को एंजॉय किया, इससे मुझे हौसला मिला। जी हां, दिल से कह रहा हूं, मुझे हौसला मिला कहानी को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए। लाल कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, उसके अगले सीजन में क्या होगा हकीकत में मैं भी नहीं जानता हूं। शायद कहानी जिस लेवल तक पहुंच गई है ऐसे में उसके लेवल को मेंटेन रखना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। कुछ टाइम के बाद मैं उस पर काम शुरू करूंगा। हाँ, और बात करें काल शंकु की तो उसमें आगे की कहानी जल्द ही आप लोग सुन पाएंगे। दोस्तों, आप लोगों का फीडबैक मुझे लगातार मिलता रहता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आप लोगों ने मुझे काफी सपोर्ट किया है और इसीलिए मैं एक बार फिर आप सभी से एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको पॉडकास्ट वो कहानियां पसंद आ रहा है तो आप प्लीज अपना रिव्यू फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वो कहानियां सुने, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट क्रिएटर, राइटर, पॉडकास्टर, फिल्म और टीवी सीरीज मेकर इस तरह का कंटेंट लेकर आए। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए वो कहानियां।